नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमिपत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनिमय संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पे एक उच्च स्तरीय मीटिंग देने वाले हैं।
श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारी ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताजा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।